ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वैश्विक संस्कृति पीस लव एंड हार्मनी इस कार्यक्रम में हम सभी पिछले दो दिनों से ना बहुत सारी प्यार भरी, प्यार की, शांति, सद्भावना की बातें सुन रहे हैं और वो हम यहाँ पर इस वातावरण में महसूस भी कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज ये हमारा वर्कशॉप भी आयोजित किया है। तो सर्वप्रथम आप चुने हुए प्रभु रत्न यहाँ पहुँचे हैं इस वर्कशॉप में, तो आप सभी अपने लिए एक बार करतल ध्वनि करेंगे और साथ ही मंच पर हमारे बीच ना परम आदरणीय तृप्ति दीदी जी हैं गुजरात भावनगर से, उनका भी मंच पर स्वागत है। परम आदरणीय हमारे सतीश भाई जी ना जो हमारे इस हेडक्वार्टर के जोनल कोऑर्डिनेटर है आर्ट एंड कल्चरल विंग के, तो आपका भी इस वर्कशॉप में तहे दिल से स्वागत है। और परमात्मा पिता की छत्र छाया में अब ये हम वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कल शाम को जो एक सेशन हुआ था सिस्टर अदिति ने लिया था, तो उन्होंने एक मंत्र सबको याद कराया था। एक बार हम उसको दोहरा कर फिर आज का वर्कशॉप स्टार्ट करेंगे। क्या मंत्र था? प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ मेरी मदद करो। तो जब उसकी मदद है हमारे साथ, तो आज का जो टॉपिक है सक्सेस, वो तो निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। ये सफलता, सक्सेस ऐसी मिठाई है जो हर कोई खाना चाहता है। ये एक ऐसा अमृत है जिससे हर कोई, जिसका रसपान करना चाहता है, परंतु उसके पहले कई चीजों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अमृत तो लास्ट चीज है। उसके पहले मंथन में हमें कभी विष और कभी कई अन्य चीजें मिलेंगी। वो ग्रहण करने की शक्ति अगर हम रखते हैं तभी हम सक्सेस को पा सकते हैं। और ये विष पीने की या विष को धारण करने की शक्ति सुप्रीम पावर के अलावा हमें और कोई दे नहीं सकता। तो सक्सेस में राजयोग की क्या भूमिका है? क्योंकि हर फील्ड में सक्सेस चाहिए, चाहे वो आर्ट है या अन्य कोई भी विषय हो। तो उस सक्सेस के लिए राजयोग की क्या भूमिका हमारे जीवन में, हमारी कला में हो सकती है, इस विषय पर, आज के विषय पर भ्राता जगदीश जी हमें इस टॉपिक के संदर्भ में और भी विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आप हमारे मुख्यालय पांडव भवन में ही निवास करते हैं और आपने सुबह इनके जीवन से भी हम सब रूबरू हुए ही हैं। 6000 से अधिक गीत आपने लिखे हैं और वो गीत सब परमात्मा से मिलन कराने वाले, भगवान से जोड़ने वाले हैं। और ये गीत भी हमारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। कईयों के मुख से सुनते हैं ना, माइंड बहुत डिस्टर्ब था, फिर हमने ये गीत सुना, एनर्जी आ गई। तो आपने ऐसे कई आत्माओं को एनर्जी दी है अपने गीतों से। तो आज के विषय पर सुनते हैं भ्राता सतीश जी से।
ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम हमारी अति प्यारी बहन सीमा बहन का हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये बहनें जब बोलती हैं तो मन करता है सुनते ही रहें, अच्छा लगता है ना। देखने में छोटे लगते हैं लेकिन ईश्वरीय देन है इनको, और बहुत खुशी की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एकमात्र इंदौर में कन्या छात्रावास है अपना, और उस कन्या छात्रावास में इतनी बहुमुखी प्रतिभावान बहनें जो आज बहुत बहुत बड़े बड़े सेवा केंद्र संभाल रही हैं, उन सब बहनों को संभालने के निमित्त हमारी बड़ी बहन के साथ आप सीमा बहन हैं, तो सीमा बहन को एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ये तो हम सैंपल देखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबा की इस बगिया में एक से एक वैरायटी, क्या सुगंध है, क्या उनकी शोभा है, क्या उनकी प्रतिभा है, उनमें सुकोमलता भी है तो चट्टान से मजबूत भी हैं। वो भिन्न भिन्न स्थितियों में परिस्थितियों में जब भी कहा जाता है कि आपको ये कार्य करना है, हाँ जरूर करेंगे, हिम्मत रखते हैं तो उसकी मदद मिलती है। एक कदम हिम्मत के चलते हैं तो हजार कदम उसकी मदद मिलती है। तो ऐसे विशेष स्थान पर आने का और इस ईश्वरी कार्य में सहभागी बनने का, परमात्मा की इस महान कार्य में हमारा आंशिक, मैं मदद नहीं कहता हूं, यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान ने इस योग्य समझा जो हमको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में लाया है। जैसा सवेरे भी सुना रहे थे, बड़ा अच्छा रहा। मैं समझता हूं बहुत छोटा सा परिवार है, जब तक और सब आए तो हम सब आपस में बात करेंगे। कोई क्लास नहीं है, कोई ज्ञान उपदेश नहीं है, लेकिन अनुभव की लेन देन करेंगे। हमारे मध्य में हमारी आदरणीय तृप्ति दीदी बैठी हैं, भावनगर जो गुजरात का एक सब जोन है उसका आप संचालन करती हैं। आप सबके अंदर में बहुत ढेर सारे उप सेवा केंद्र, कई सेवा केंद्र और कई गीता पाठशालाएं जो चलती हैं, जो रात दिन अथक बन करके बहुत सेवा करते हैं, तो हम सब तृप्ति बहन का भी बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, राजयोग द्वारा कला में सफलता, ये विषय है। और राजयोग कोई परिभाषा देने की बात नहीं है, हम सबका योगी जीवन बन गया। और इस योगी जीवन में कदम कदम पर हैं, संसार में रहते, संगठन में रहते, हम राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं। और अभ्यास के बाद जो अनुभूतियां होती हैं, और अनुभूतियों के बाद जो उपलब्धि होती है, जो प्राप्ति होती है, वो बहुत विशिष्ट है। अगर देखा जाए कि राजयोग क्या है, तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। यहां सामने जो इतने भाई बहने जो राजयोग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनसे परिलक्षित होता है, उनके जीवन से दिखाई पड़ता है। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है कि पहले तो मैं ये सोचता था कि राजयोग की परिभाषा क्या सुनाऊं, लेकिन मैं सोचता हूं ये तो मैं रात दिन अनुभव कर रहा हूं, अभ्यास कर रहा हूं, उसे मैं जी रहा हूं, इसकी परिभाषा सुनाने की आवश्यकता क्या है। कभी कभी ये हो सकता है कि हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन इतना अच्छा सुना नहीं सकते। अनुभूति जो है वो आंतरिक विषय है, अंतरात्मा की विषय चीजें हैं, जिसको हम बहुत ही गहराई से अनुभव करते हैं और उसको पल पल महसूस करते हैं। तो वही है कि जो अनुभूतियां हैं वो वाणी से मुखरित नहीं हो पाती हैं, और जो वाणी से मुखरित हो जाते हैं वो अनुभूतियां के गहराई में होता भी नहीं। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अनुभव की भी गहराई में उतरा हो। और एक व्यक्ति अनुभव की गहराई में उतरा हो सकता है, संभव है कि वो व्यक्त नहीं कर पाता है ना। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही चुपके से रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं, उनकी कला बोलती है। आर्टिस्ट कई हैं जो बहुत अच्छा बोलेंगे नहीं, लेकिन अपनी कला में इतने निपुण हैं कि जब वो वाद्य यंत्र अपना बजाते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं तो किसी दिव्य लोक का अनुभव करते हैं कि मैं इस धरती पर हूं ही नहीं, किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। उनको माइक दिया जाए तो कहें कि भाई मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, नहीं बोल पाते। तो ये जो विषय है राजयोग का, इसको व्यक्त करने के लिए ढेर सारी पॉइंट्स दी जा सकती हैं, लेकिन अनुभव की गहराई में उतरा जाए तब पाया जाता है कि राजयोग के अभ्यास से एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है। आज सवेरे भी सत्र में आप सबने सुना होगा राजयोग के आधार और विधि, उसमें राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि कहते हैं। तो उन अष्ट शक्तियों में सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय की शक्ति है, परखने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है और सहयोग करने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है और संकीर्ण को विस्तार करने की शक्ति है। और ये प्रायः हम सब जीवन में देखते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक एक भाई बहन जो राजयोग का अभ्यास कर रहा है उसके जीवन में उतरते हमने देखा है। कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, हमारी दादियां हॉस्पिटल में हैं लेकिन वहां डॉक्टर पूछते हैं कि पेशेंट कौन है, और दादियों को जाना और डॉक्टर की सेवा हो जाना। आज उनमें से तमाम डॉक्टर, हमारा BSCS हॉस्पिटल है मुंबई में, और उस हॉस्पिटल के द्वारा भी बहुत बड़ी सेवा हुई। दादियां जब भी गई हैं, हमारी आदरणीय गुलजार दादी जो बाबा की साकार रथ, वो गए तो डॉक्टर अशोक मेहता जी जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, एशिया में बहुत मुख्य स्थान रखते हैं, उनका पूरे के पूरा परिवार जो जैनी थे लेकिन जब दादी जी के पास सेवा में आए तो पूरा, आज वो कितने वर्ष हो गए, मैं समझता हूं कि 30-35 साल हो गए होंगे ना, 30 साल से ज्यादा हो गए, हाँ 30-35 साल हो गए, अशोक मेहता जी पूरा परिवार सहित ज्ञान में आ गए। और उनको उनके बड़े विलक्षण अनुभव हैं, तो दादियों की निमित्त तो बहाना था। तो हंसी में क्या कहते हैं, दादी जी कहती है डॉक्टर तेरे को ज्ञान में लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। वो कहते हैं, डॉक्टर कहती है, दादी कहती है डॉक्टर तेरे को ज्ञान में लाने के लिए, मतलब निमित्त तो कुछ भी बन जाता है लेकिन दादी जी का वहां जाना न होता है तो उनके परिवार का आना कैसे होता है। अब आप सब यहां पर आए हैं, ये साधारण बात नहीं है। कोटि कोटि लोगों में से कुछ लोगों का भाग्य जगता है जब ईश्वर का सानिध्य मिलता है, उसका परिचय मिलता है, उसकी पहचान मिलती है, उसका सानिध्य मिलता है, उसका साथ मिलता है, उसका सहयोग मिलता है, उसका प्यार मिलता है, उसकी अनुकंपा उसकी कृपा मिलती है। ये जो भाग्यवान हैं उनमें से आप भाग्य विशेष हैं, जो पद्मा पद्म भाग्यवान हैं जो आप यहां पधारे। तो राजयोग के द्वारा एक जो सबसे बड़ी शक्ति मिलती है वो सहन शक्ति मिलती है। मैं अपना अनुभव सुना दूं, यूं तो मैं तो ठीक था लेकिन कभी कोई एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ हर्निया का, डॉक्टर ने कहा आपको कुछ हुआ है क्या, हार्ट का कुछ तकलीफ है, मैंने कहा नहीं, कहा इसमें कैल्शियम है, सिटी स्कैन में आता नहीं है, एक बार एंजियोग्राफी करा लीजिए। मैं तो प्राणायाम व्यायाम चलने फिरने वाला था, मैंने कहा ठीक है डॉक्टर आपके डाउट दूर कर देते हैं। गए तो 60-70-80 जो है ब्लॉकेज निकला, मैंने कहा ये कहां से हो सकता है, हेरिडिटरी हो या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन का, हमने कहा कोई तकलीफ नहीं है और मैं तो सब काम करता हूं। तो आए, अपना कैट भी होता है यहां पर, हार्ट का बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है शांति वन में। अभी पिछली बार 4 साल के बाद मैं समझा बिल्कुल ठीक हो गया हूं, डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि एक बार एंजियोग्राफी करा लीजिए, 4 साल हो गए, खुशी से गया। तो डॉक्टर को यहां एंजियोग्राफी में कहते हैं आपका 10 पॉइंट और आगे बढ़ गया है, 70, 80 और 90 हो गया है। मैंने कहा ये कहां से आ गया? तो अभी 5 जून को ऑपरेशन हुआ बाईपास और मैं आपके सामने बैठा हूं। तो ये योग बल कहिए, इसको तपोबल कहिए, मनोबल कहिए, जो ये सिद्धियां मिलती हैं, जो शक्ति मिलती है, ये राजयोग की कमाल है। डॉक्टर भी कहते हैं आपका सब पैरामीटर बहुत अच्छा है, पता ही लगता है आपको कुछ हुआ भी है। ऑपरेशन के बाद भी तीसरे चौथे दिन चलाना शुरू कर दिए, सीढ़ी चढ़ाना शुरू कर दिए, मैं आपके सामने बैठ गया, देखो गीत वगैरह सब गा रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। और ऐसा लगा कि कहते हैं सूली से कांटा हो गया, मैं तो कांटा भी नहीं कहता हूं, सूली से फूल हो गया। तो ये उसकी देन है, सहन शक्ति राजयोग के द्वारा बहुत मिलता है। दूसरी बात समाने की शक्ति, हमारे इतनी बहनें हैं, इतने भाई हैं, हम लगभग 1,500 से 2,000 भाई बहनों के बीच में रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। भांति भांति के संस्कार होते हैं, एक ही दिन में सब देवता तो बनते नहीं हैं, हम सब प्रोसेस में हैं राजयोग के अभ्यास से अपने जीवन को परिवर्तन करें। तो इसके बीच में देखा जाता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि आई कि हम कहाँ समाना है उसको समा लेते हैं, कहाँ पर मुखरित होना है, कहाँ पर बयान करना है, कहाँ कुछ सुनाना है, तो सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। निर्णय शक्ति आती है, एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि राजयोग में ध्यान में बैठते हैं लंबे लंबे समय तक, एक एक घंटे बैठे, दो दो घंटे बैठे। जैसे मैं सवेरे बता रहा था, मैं सामने मेडिटेशन गाइड करता हूँ बहुत लंबे समय से। सुरेश ओबेराय जी पहली बार आए तो ओम शांति भवन में सामने बैठे, और अमृत बेला था, दादी जानकी जी बीच में बैठी थी, एक बहन उधर बैठी थी, इधर मैं बैठा था, मेडिटेशन करा रहा था। तो सामने बैठ करके वो देखे और योग में बैठे क्या अनुभव हुआ होगा पहली बार, वो तो वही जानते हैं। फिर शाम को दादी जी की क्लास में आए तो किसी ने परिचय कराया कि अपने सतीश भाई हैं, अपने ब्रह्मा कुमारी इसके सारे गीत, मोस्टली गीत लिखते रहते हैं। तो वो पूरी सुने नहीं कि ये क्या भाई परिचय, भाई भाई आप वही हैं जो सवेरे बैठे थे क्या? मैंने कहा हाँ भाई जी। कहा कमाल है आप ऐसे बैठे, मैं तो आपको ही देखता रह गया। आप इतने बड़े एक्टर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो देखते रहे कि ये बैठा है ये बंदा, इसकी पलक नहीं झपकती जबकि पौने घंटे तक ऐसे बैठा है मूर्तिमान होकर के, बड़ा गजब का है। अब मैं तो इसलिए नहीं बैठा था कि लोग हमको देख करके ये कहें, मैं तो अपने ईश्वरीय मिलन में, प्रभु मिलन में, राजयोग में, ज्ञान में, ध्यान में मस्त रहा, बड़ा अच्छा रहा। तो इस तरह से जो एक एकाग्रता की शक्ति है वो बढ़ जाती है, और उसके कारण बड़ी विलक्षण प्रतिभा आ जाती है। आजकल के बच्चों को राजयोग की बड़ी उपयोगिता है, अगर वो सीख जाए, और हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के जितने भी भाई बहने हैं उनके बच्चे जो हैं, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, उनके अंदर विलक्षण, वो पढ़ाई में भी तो ज्ञान योग में भी दोनों में अच्छे मार्क्स लेकर पास होते हैं। जितने भी हैं राजयोगी उनके बच्चे अच्छे अव्वल नंबर से पास होते हैं। तो इसका परिणाम है कि राजयोग के अभ्यास करते हैं तो एकाग्रता बढ़ जाती है, ध्यान मगन हो जाता है, मन का भटकना बंद हो जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जहां पर आप इस वातावरण में शांति अनुभव कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण है कि यहां प्योरिटी है। बिना प्योरिटी के ना तो सुख मिल सकता है ना ही शांति हो सकती है। जहां पर हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार वो भटकने वाला है, बुद्धि भटकेगी, तो आप भी यहां बैठेंगे तो आपकी भी बुद्धि भटकती रहेगी, और जहां बुद्धि इधर-उधर भटकती है वहां प्योरिटी हो नहीं सकती, और जहां प्योरिटी नहीं होगी वहां शांति नहीं हो सकती। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब भाई बहने आते हैं, मेहमान आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो पहला ही यही कहते हैं, भाई जी यहां की स्वच्छता, यहां की पवित्रता बड़ा गजब का है, हमने दुनिया देखे हैं लेकिन यहां की ऊर्जा देख करके ऐसा लगता है हम कहीं नई दुनिया, दूसरी दुनिया में आ गए। और देखते हैं जब बहनों के ड्रेस देखते हैं, श्वेत परिधान देखते हैं, इनके पवित्र दृष्टि पड़ती है, मधुर बोल निकलते हैं, तो हमारी विदेश की बहनें जहां पर पवित्रता नाम की प्योरिटी का ब्रह्मचर्य का नाम निशान नहीं होता है, वो जब श्वेत वस्त्र में रसिया के और हमारे अन्य देशों की जो बहनें आती हैं, एरोड्रम पर आती हैं, एयरपोर्ट पे आती हैं और जब बोलती हैं ओम शांति, तो अपने बड़े बड़े ऑफिसर से आश्चर्य होते हैं कि ओम शांति ये क्या बोल रहे हैं, भारत के कल्चर को ये बता रहे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है। उनके श्वेत परिधान एकदम, जिसे चेहरे भी उनके नैन देखे तो रसिया के तमाम भाई बहने, पेरिस की हमारी बहने देखे लगता है कि वो धरती पर परी की तरह हैं, इतने सुंदर, इतनी सुरुचिपूर्ण, इतने पवित्र व्यवहार, इतना आध्यात्मिकता की परिभाषा जिसे जीवंत परिभाषा हो मूर्त, तो वो देख के बड़ा आश्चर्य लगता है कि सचमुच बड़े कमाल की चीजें हैं। तो यहां पर देखा जाए तो निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समझने की शक्ति, विस्तार कुसार, हम सबके मन में कोई विस्तार नहीं है। विस्तार इसलिए नहीं कि कोई इच्छाएं नहीं, आज संसार में इच्छाओं के पीछे व्यक्ति परेशान है, अनंत है, 99 के फेर में है और उसमें न तो सो सकता है, न जाग सकता है, न कुछ कर सकता है, बड़ा बेचैन है, बड़ी गजब की मनोदिशा और मनोदशा है। उसके बीच में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्णता रूप से आगे आ जाए, पूर्णता रूप से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, सराहनीय है, ये आप अनुभव कर रहे हैं, आप द्वारा खुद ही सुन रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि राजयोग की जो देन है वो यहां पर कण कण में, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। हमारे भाई बहनें इसमें बड़े प्रवीण हैं, बड़ा अद्भुत परिवार है। मैं एक बार फिर से आपको इस परिवार में, अपने दैवी परिवार में, चिर बिछुड़े परिवार में फिर से आने की मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, बहुत बहुत ढेर सारी मुबारक देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्यादा न कहते हुए, हम तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन हमारे मध्य में हमारी तृप्ति दीदी है, वो अपनी अध्यक्षीय बताएंगे, उद्बोधन देंगी, लेकिन आप सब सामने हैं, आप अपने अपने अनुभव बताइए कि जो आपको यहाँ पर आए, तो अभी तो बहुत कुछ सुनना और बहुत कुछ करना बाकी है, इसकी एक झलक ही मिल रही है, लेकिन कभी कभी एक मटके का जो पकाया हुआ होता है, हांडी का एक दाना अगर देख लिया जाता है कि पका है कि नहीं, उसी से पता लग जाता है कि भोजन पक गया है कि नहीं, खाना पक गया है कि नहीं। तो आप यहाँ पर आए, आपका अनुभव कैसे है, क्या समझते हैं कि राजयोग का अभ्यास आपकी कला में, आपकी कला क्षेत्र में, आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कहाँ पर आपकी कला क्षेत्र में कितना उपयोगी हो सकता है, और किस तरह से हम राजयोग का अधिक से अधिक फायदा लें, इसको जाने के बाद कैसे अप्लाई करेंगे, क्या आपके मन में प्लानिंग है, उसको करें, जिसे आप सब एक एक बार दो दो बार आ चुके हैं तो आपके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सब अनुभूतियां कर रहे हैं तो आप स्वयं सुनाएंगे। मैं समझता हूं कि इससे प्रेरणा मिलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि राजयोग क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे उसको जीवन में लाया जाए और अपने जीवन को राजयोगी बनाया जाए, लोगों के लिए आदर्श बनाया जाए, क्योंकि आज लोग जो है वो भाषण नहीं सुनना चाहते, वो आपका आदर्श देखते हैं, आपका जीवन देखना चाहते हैं, कि आप आए और अपना जीवन सामने, अपने जीवन से, अपने कर्म की कलम से सबको सिखाएं, सबको बताएं, उससे ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता सतीश जी, आपने राजयोग के द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियों के माध्यम से हम जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं इस बात पर विचार दिया। अब आप सभी से ही अनुरोध है कि कि इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप है ना, इसमें हम सभी को शेयर करना है ना। तो हम दो दिन से इसका अनुभव कर रहे हैं, सुन रहे हैं इस वातावरण से, और हमारे महारथी भाई बहनों से हमने जो कुछ भी सुना समझा है उसके आधार से क्या लगता है, हम क्या कर सकते हैं, चाहे अपने परिवार में, चाहे अपने आर्ट या किसी भी क्षेत्र में, किस प्रकार हम राजयोग को अप्लाई कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं। तो आपसे हम सुनना चाहेंगे।
ओम शांति। मेरा नाम शोभन पिल्लई, मैं गुजरात से हूँ और तकरीबन 22 सालों से मैं ड्रामा फील्ड में एक्टिव हूँ। ज़्यादातर मेरा काम स्कूल के बच्चों के साथ ही रहा है और मैं ये गर्व से कहता हूँ कि मैं हर साल कम से कम 400 से 500 बच्चों को म्यूजिकल ड्रामा सिखाता हूँ और हर एक ड्रामा मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का रहता है। एक बात थी जो मुझे राजयोग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, अभी मैं सीख रहा हूँ, ये मेरा पहली बार है। नड़ियाद में जो सेंटर है बिपिन मामा, उनके संपर्क में मैं कुछ 6 महीने से हूँ। नड़ियाद में बिपिन मामा है, उनके संपर्क में मैं 6 महीने से हूँ। तो पिछले 6 महीनों में काफ़ी कुछ जानने को मिला है, सीखने को मिला है। अभी समर कैंप भी वहाँ पर हुआ तो अचानक से एक हो गया कि ड्रामा करवाना है बच्चों को, कोशिश की, अच्छे से हो गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो राजयोग में जो हम मेडिटेशन में जो भी सीख रहे हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए कला का इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से बात काफ़ी हो रही है कि सर ने भी बताया था कल सुबह OTT प्लेटफॉर्म पर जो भी आजकल चल रहा है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही है कि जो हम बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं या फिर बच्चे हमारे साथ नहीं देख सकते हैं, इवन एडल्ट जो अपने माँ बाप के साथ कुछ चीज़ें नहीं देख सकते हैं, उसमें से अगर बच्चों को निकालना है तो ये मेडिटेशन के द्वारा जो भी हम सीख रहे हैं उसको कला के साथ जोड़कर बच्चों को अगर सिखाई जाए अभी से, मतलब ये मेरा अभी मेरे हिसाब से ये मेरा दायित्व होने वाला है कि अगले साल से जो भी मैं म्यूजिकल ड्रामाज लिखूंगा और उसको जो भी मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये चीज़ें ध्यान में रखूंगा कि इसमें मेडिटेशन हो, उसमें सोशल इन्फॉर्मेशन, अभी तक सिर्फ माइथोलॉजी को ही पकड़ के चल रहे थे हम लोग, लेकिन अब सोशल अवेयरनेस के हिसाब से भी कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करके बच्चों को भी मेडिटेशन और जो पीस हारमोनी का जो हमारा एक उद्देश्य है, खास करके हारमोनी जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। प्रेम तो परिवार से मिल जाएगा लेकिन सद्भावना जो है वो परिवार में सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये मेरा खुद का अनुभव है कि 2 भाई है लेकिन उन दोनों के बीच में नहीं बनती है, मेरा खिलौना ले लिया, मेरी नोटबुक ले ली, वो भी चल रहा है। तो एक सद्भावना जो उन बच्चों में से निकलती जा रही है उसको ड्रामा और म्यूजिकल शोज के जरिए ऐसी स्टोरीज डेवलप करके उनके पास वो परफॉर्म करवाए तो शायद धीरे धीरे अगली जो आने वाली पीढ़ी है उसमें ये चीज़ हम ला सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी और कोशिश ये भी रहेगी कि मैं राजयोग के बारे में और जानूं और सीखूं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मैं अपने कला में करूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा है क्योंकि वास्तव में किसी भी कार्य की जो शुरुआत है वो बच्चों से अगर की जाती है तो हम सब जानते हैं कि बच्चे ही भविष्य हैं। बूढ़े और बड़े होने के बाद तो हम क्या कहते हैं, अब तो बदलना मुश्किल है। हालांकि राजयोग ऐसी टेक्निक है कि आप किसी भी उम्र में अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो नई फुलवारी है उसको हम पहले ही उस तरह से गाइड करें कि वो अच्छे से अच्छा कार्य करे। तो आप तो बहुत ही अच्छा कार्य वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को अगर ड्रामा सिखा रहे हैं तो मतलब निश्चित है कि वो उनके समाज को दिशा देने वाला ही होगा, क्योंकि जो स्कूल्स में कॉलेजेस में ड्रामास होते तो वो बहुत उसी प्रकार के होते, प्रेरणा वाले। अगर उसमें और मेडिटेशन शामिल हो जाए तो ये सोने में सुहागा होगा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई?
ओम शांति। ओम शांति। मैं बिहार से हूँ, गया नवादा से, गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं बैक स्टेज भी हूँ, फ्रंट स्टेज भी हूँ, क्योंकि मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ और लिखती भी हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ। और मुझे एक बात याद आती है, मेरे एक गुरु हुए थिएटर के पटना में, जिनका नाम था अजीत गांगुली, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि अगर बच्चे थिएटर करेंगे, जो बच्चे थिएटर करेंगे वो चाहे कुछ भी बने जीवन में, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं बनेंगे। और उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब मैंने एनएसडी किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया, और मैंने जब थिएटर वर्कशॉप लेना शुरू किया बच्चों के साथ, बहुत दूर दूर तक मैंने राजस्थान के भी कई गांवों में थिएटर वर्कशॉप लिया है, और स्लम्स के बच्चे बच्चियों के साथ भी लिया है। और जो जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में अगर अध्यात्म राजयोग, तो मैं वही कहूँगी कि जो संस्कार घर में बच्चों को मिलते हैं, वही संस्कार थिएटर और राइटिंग। जैसे स्लम्स की बच्चियों को मैंने राइटिंग भी सिखाया, हाउ टू राइट पोयम, स्टोरी टेलिंग, ये सब सिखाती हूँ। तो पता नहीं क्यों एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि अभिनय जो है अध्यात्म का दूसरा नाम है, क्योंकि हम नाइन रसा पे काम कर रहे हैं। अभिनय, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, पंचम वेदों में भी बड़ा कहा जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को जानने के लिए, समझने के लिए अध्यात्म का जानना, जिसको आप राजयोग का नाम दे रहे हैं, पूरा जो माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट होना, कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना, ये सब इसमें आता है। और अब मैं खुद ये करती हूँ कि मैंने द्रौपदी नाम से एक सोलो नाटक किया, पूरे भारत में हो चुका है, 1.5 घंटे का नाटक है। तो एक्टिंग के जो लोग यहाँ हैं वो जानते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, कैरेक्टराइजेशन है, इम्प्रोवाइजेशन है, इस कैरेक्टर को कैसे करना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, बहुत सी बातें हैं। पर मैं आपको बताऊं, बिना राजयोग जाने और अध्यात्म को समझे बिना, तब ये 2007 की बात है, मैंने क्या किया कि एक अच्छा सा सूदिंग म्यूजिक लगा के सो गई, लेट गई जमीन पे, और उसको सुनते सुनते जो जो इमेज में आया, इवन कि द्रौपदी का डायलॉग क्या होगा वो तक आया मुझे। टाइम लगा, एक दिन का नहीं है ये, 1.5 घंटे का नाटक है, इस प्रोसेस में मुझे 2-4-5 साल लगे थे। पर बिलीव मी, आप सब लोग यकीन मानिए कि उस नाटक में जो एक एक लाइन है वो मुझे मेडिटेशन में आया। और मैं उसका उदाहरण एक दो लाइन में सुनाना चाहती हूँ, अगर कि महाभारत सबने पढ़ा है, द्रौपदी की कहानी सबने पढ़ी है, तो वो चीरहरण याद होगा, जहाँ पे द्रौपदी कौरवों को धिक्कारती है, शाप देती है, या कहती है कि मैं उस दिन केश बांधूंगी जिस दिन कौरवों के रक्त से अपने केश बांधूंगी। मेरी द्रौपदी में जो है वो कहती है, और आप इसको देखें कि क्या ये नहीं कहेगी एक स्त्री उस सिचुएशन में, वो कहती है कि उस वक्त मुझे कौरवों पर नहीं, अपने पांचों के पांचों पतियों पर क्रोध आया, और मुझे लगा कि मैं इनकी हत्या कर दूं और इनके रक्त से केश धो, और सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पति की कायरता नहीं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, और पूरा 1.5 घंटे का नाटक है, और मुझे अब बहुत बहुत मदद मिलती है कि मेडिटेशन के थ्रू मैं कैरेक्टराइजेशन में जाती हूँ, और मैं बच्चों को जो थिएटर करा रही हूँ उसका नाम रखा है थिएटर थेरेपी, जिसमें मैं उनसे पहले तो खूब बुलवाती हूँ, बोलो अपने बारे में, घर के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, भाई बहन के बारे में, दोस्तों के बारे में, मोहल्ले के बारे में, उनको हंसाती भी हूँ, उनको रुलाती भी हूँ. सो कम टू क्राई एंड लाफ एंड शेयर एंड हेल्प. सो ये सब कुल मिला के मेरा जो काम है, और ये मुझे जो देता है वो उस, जैसे कहते हैं कल से कई बार ये हम लोगों से पूछा गया, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, और मैं यही कहती हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये गूंगे का गुड़ जैसा है. तो जब बच्चे मेरे वर्कशॉप से कुछ सीखते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, या वो 10 दिन 15 दिन में जो चेंज होते हैं, वो जो मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है, उसको मैं बयां नहीं कर सकती. और ये करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब लगता है कि जो वो कहते हैं ना कि आपका लाइफ ऑफ पर्पस क्या है, सो आई गॉट द पर्पस. एंड मैं 8 साल पहले यहाँ आई थी, मैं दोबारा, ये मेरा चांस है, और मैं ब्रह्मास कुमारी के साथ टच में हूँ. मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे डिस्कोर्स सुनती हूँ, मुरली सुनती हूँ, बाबा के गाने सुनती हूँ, और बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है. थैंक यू, थैंक यू. ओम शांति.
असीमा भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद असीमा भट्ट जी को. आपने बहुत सुंदर अपना अनुभव सुनाया, और रियल में किसी भी कला या किसी भी नए आविष्कार के लिए डीप साइलेंस, मेडिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जो भी अनसुलझी बातें हैं वो उसी साइलेंस में सुलझती हैं, क्योंकि जब तक हम अपना माइंड चलाते हैं तब तक ऊपर वाला देखता है ओनली, लेकिन जब हम साइलेंस हो जाते हैं तो वो टच करता है क्या करना है. तो जब भी कोई ऐसी बात आती है, डीप साइलेंस, बस उस पर छोड़ दो, फिर आप देखेंगे कि फिर वो होगा जो रियल में हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा. बहुत अच्छा. आप में से किस तरह हम राजयोग का अभ्यास करें और अपनी कला में, आपको तो ज्यादा इंस्पिरेशन देना है जाने के बाद, है ना, क्योंकि यूथ को आगे लाना है ना.
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. हेलो, मेरा नाम हेमंत वर्मा, मुंबई से हूँ, और फिल्म मेकिंग मेरा प्रोफेशन है, एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स मेरा पैशन है. स्पेशली फोक आर्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारी लोक कलाएँ विलुप्त हो रही हैं उनको मैं डॉक्यूमेंट करके आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखने की कोशिश में हूँ, ताकि आज जो हमारे पास है हो सकता है कल नहीं होगा, लेकिन उनको लिए कुछ हम बता सकते हैं कि ये हमारा था किसी जमाने में, तो उस पर मेरा काम चल रहा है. और जब भी कुछ नया करने की कोशिश की है तो बिना ऊपर वाले की मदद के तो कभी नहीं हो पाया है, और जब भी मैं अटका हूँ मैंने काम बंद कर दिया है अपना, रिलैक्स किया और एक गैप के बाद में, एक साइलेंस के बाद में एक कुछ थॉट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. मैंने कल भी एक किस्सा बताया था, शायद आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. मैं संत नामदेव जी पे बहुत काम कर रहा हूँ, उनकी बायोग्राफी मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के रूप में, और उनके जो 61 अभंग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में हैं, तो उनकी मैंने व्याख्या की है और उस पर मैंने किताब लिखी है. तो मुझे काफी दिनों से ये मन में था कि यार नामदेव जी मतलब हमारे इतने पूज्य संत हैं और भक्ति आंदोलन के पहले संत हैं वो अगर देखा जाए तो उनके बारे में लिटरेचर ना तो कहीं पढ़ने को ज़्यादा मिल रहा है ना ही कहीं सुनने को ज़्यादा मिल रहा है। यूट्यूब पे भी आप जाएंगे कहीं किसी ने, तो मैंने जो हमारे नामदेव समाज के लोग हैं उनसे मैंने बात किया कि भाई मेरे को मेरा मन है कि मैं नामदेव जी का चालीसा रिकॉर्ड करूं, तो अगर कहीं किसी के पास लिखा हुआ है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको एक अच्छे ढंग से मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा। एक महीना दो महीना निकल गया सर, कोई किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं दिलीप ताहिर साहब, जो इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो लेखक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने ताहिर साहब ये एक चालीसा लिखना है नामदेव जी का। बोलते यार मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को तो कुछ भी ABC भी नहीं मालूम उनके बारे में। मैं बोला मैं लिटरेचर भेजता हूँ, मैं फिल्म का पे जो काम चल रहा है उसका लिटरेचर आप पढ़ लो, उसके बाद आप लिख दो। ठीक है भेज दो, मैं कोशिश करता हूँ। तो सर मैंने अपनी फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो उनको मैंने फॉरवर्ड कर दी। 5 दिन 10 दिन महीना निकल गया, उन्होंने एक कुछ लिख के भेजा, चालीसा लिख के भेजा, मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब यार ये तो बहुत ही मतलब आज के शब्द जो हैं उसके। तो सर मैंने खुद ही मैंने सोचा मैं चलो मैं कुछ अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। कोशिश की, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, वो टूटे फूटे जो थॉट्स आते थे वो मैं अपना पेपर पे लिख के छोड़ देता था। एक दिन रात को अचानक ना सडनली मेरी 2 बजे आँख खुली, और उसके बाद मेरी आँख खुली। कभी ये मेरे साथ बहुत अक्सर होता है कि मैं 2 बजे एकदम झटके में आँख खुल जाती है, फिर मैं सो नहीं पाता हूँ। फिर मैं आधा घंटा वेट करता हूँ कि अगर नींद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आधे घंटे बाद मैं किचन में जाता हूँ, चाय बनाता हूँ और मैं अपना कंप्यूटर खोल के बैठ जाता हूँ। कुछ भी जो भी थॉट्स आता है नया मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। तो उस दिन भी यही हुआ। तो सर मैंने जो थॉट्स थे मेरे उनको इकट्ठा किया और मैंने लिखना शुरू किया उस पर। आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 6 बजे मेरा चालीसा रेडी था, वो जो पीरियड था। उसके बाद वो चालीसा हमने अनूप जलोटा जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया, और आज वो पूरे समाज में इतना पॉपुलर हो गया है कि उस चालीसा के बिना समाज का कोई भी फंक्शन शुरू नहीं होता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये ऊपर वाली जो भी एक पावर है जिसे हम ईश्वर मानते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो उनके मदद के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। क्रिएटिव काम तो कोई भी नहीं कर सकते। कोई अगर ये बोले कि यार मैं 2 पैक मार के लिखता हूं, तो 2 पैक के बाद भी भाई आपकी वो हेल्प करता है। आपका माइंड, आपका दिमाग बोलता है कि सॉरी 2 पैक काम करे, 2 पैक काम नहीं कर रहे हैं, उनका असली पैक उनका काम कर रहा है जो आप लिख के पेपर पे लेके आ रहे हो। तो अभी जो यहां पे अभी लास्ट ईयर में आया था तो 5 दिन मैं यहीं पे था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ से जाने के बाद सेंटर भी मैंने ज्वाइन किया, गया भी 2-3 बार, और अक्सर वो दिनेश भाई हमारे जो हैं अपना, जिन्होंने यहाँ का रास्ता दिखाया मेरे को दिल्ली से। तो आप सोचिए कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बाबा ने कैसे मेरे को यहाँ बुलवाया है। बॉम्बे के किसी सेंटर की तरफ से मेरे को कॉल नहीं आया। दिल्ली में जो दिनेश शर्मा हैं वहाँ पे, पूनम दीदी के शालिनी बाग वाले, उनका मेरे पास फोन आया, मैं हाँ जी मैसेज आया कि वो मेरे फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में है। मेरे को ध्यान नहीं इतने लोग हैं, वो भी सही हैं। एक दिन मैसेज आया सर मुझे आपसे बात करनी है। मैं बोला ठीक है, मैंने अपना नंबर दे दिया उनको। उनका फोन आया कि साहब मैं आपको ना गॉडली गेस्ट के तौर पर आपको मैं इन्वाइट करना चाह रहा हूँ, हमारे वहाँ पे एक कल्चरल विंग है उसमें आपका एक सेशन है, तो 5 दिन का एक कोर्स है, तो आप आइए। ऑनेस्टली मुझे कुछ यकीन नहीं हुआ। मैं पता नहीं कौन है यार, अभी कहीं पता नहीं दे मेरे को। मैं बोला ठीक है मैं सोचता हूँ। उसके बाद फिर फोन आया उनका, फिर मैंने सोचा है बंदा सीरियस लग रहा है, तो उन्होंने मेरे को सीधा इनविटेशन लेटर ही भेज दिया आपका, जो उसका ब्रह्म कुमारी के लेटर हेड पे। तो मेरा को यकीन हो गया। फिर मैंने इनको पूछा मैं आप चलोगे साथ में, तो बोला कि हाँ मैं चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी। मैंने उनको फिर फोन किया, मेरा वाइफ आना चाह रही, तो बोले सर मोस्ट वेलकम, आप उनका नाम बता दीजिए, बहन जी का, मैं उनके नाम पे भी इन्विटेशन भेज देता हूँ। तो मुझे बुलाना था यहाँ पे बाबा ने, और रास्ता कहीं से और निकाल के उन्होंने भेजा। और इस साल जब उनका फोन आया कि उन्होंने मेरी बेटी के लिए फोन किया था कि वो भी आर्टिस्ट है, कि सर दीदी को बोलिए कि वो अटेंड करेंगे, तो वो बोले कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, मेरा काम है। मैं बोला मैं आ जाऊं भाई, बोला सर आप पिछली बार भी आए थे। मैं बोला तो क्या हो गया यार, फिर आ जाता हूं। बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने, मैंने एक दो सागर सैनी हैं उनको मैंने सजेस्ट किया उनको, तो वो आए। तो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था लास्ट टाइम का। और उसके बाद अब बिलीव मानिए कि साल भर मेरा कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला, ऑनेस्टली। एज फॉर वर्क बोलिए, और आप एक हर आर्टिस्ट की दो ही तमन्ना है, होती है कि उसके काम को प्रोत्साहन मिले, एप्रिसिएशन मिले, और फाइनेंशियली थोड़ा ठीक ठाक सा हो। तो प्रोत्साहन तो आपको सबको पता है कि मैंने बताया था कि नेशनल अवार्ड मेरे को लास्ट ईयर मिला, उससे बड़ा तो अचीवमेंट कोई हो नहीं सकता लाइफ में। एक दो किताबें मेरी पब्लिश हुई उसी इसी साल में, 2023-24 के बीच में। काम भी ऊपर वाले की मेहरबानी से ठीक ही चल रहा है। अब यह है कि आगे क्या करना है। आगे जो मेरा जो अपना सोच है, जैसे कि अभी आज सुबह बताया, कल भी अदिति बहन जी ने जो बताया था कि जब भी आप कोई काम करें तो बाबा को याद करके आप काम की शुरुआत करें, तो उससे रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। अब जो करना है वो तो उन्होंने करना है, हमने तो कुछ नहीं करना है। हम तो करने वाले कोई है नहीं, हम तो एक जरिया है खाली। हमारे कलम हमारे हाथ में है, लेकिन उसको चलाने की ऊर्जा तो वही देने वाले हैं। तो बस यही है कि जाने के बाद, यहां से जाने के बाद कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं अपना मेडिटेशन के लिए मैं दे सकूं, क्योंकि सुबह 4 बजे ऑनेस्टली उठना बहुत थोड़ा मुश्किल काम है, फिर भी कोशिश रहेगी। और बाकी तो आप सब लोगों की दुआएं चाहिए। और मैं अक्सर यही कहता हूं कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई नुकसान हो, या मेरे बच्चों पे कोई उंगली उठाए यार तुम्हारे बाप क्या लिख के गया, क्या फिल्म बना के गया, वो मैं कभी नहीं करूंगा लाइफ में। यही एक मेरा बस। ओम शांत।
बहुत बहुत धन्यवाद। यही चाहिए कि आज हम अच्छा लिखें, सच्चा लिखें, जिससे आने वाली पीढ़ी को ना हम पर, मतलब आज पर गर्व हो, ना ऐसा कुछ देकर जाएं। बहुत सुंदर अनुभव भाई साहब आप कुछ शेयर करेंगे।
ओम शांति। मेरा नाम सूरज तिवारी है और मैं बाय प्रोफेशन एक फिल्म मेकर हूँ। कुछ फिल्में बनाई हैं, छोटे मोटे काम करे हैं। राजयोग को अभी हम खुद आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी समझ रहे हैं कि क्या है। सहन शक्ति, शांति, सबसे अच्छी और बढ़िया जो यहाँ अनुभव किया है वो पीस ऑफ माइंड है। क्योंकि जब तक आपका मन, आपकी शारीरिक ऊर्जा जब तक शांत नहीं रहती, तब तक आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, ये तो तय है। तो उसमें खोने की कोशिश जारी है बिल्कुल पूरी तरीके से। और यहाँ से जाने के बाद जैसा कि एक्सपीरियंस है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो ये जो ऊर्जा है जिन सोर्सेस से मिल रही है, उन सोर्सेस को जगाए रहने का काम करेंगे ताकि वो मिलती रहे हमें और हम अच्छा काम करते रहें। जैसे हेमंत भाई ने कहा कि कोई भी काम ऐसा नहीं करना है और नहीं करके जाना है ताकि बाद में बच्चे क्या और भी लोग ये बात कहें कि इन्होंने ठीक या अच्छा काम समाज के हित में नहीं किया, जिसको कि देख के पढ़ के या तो ये भावना ना आए कि कोई आगे उसको इंस्पिरेशन ना मिले, कोई मोटिवेशन ना मिले आगे बढ़ने का काम करने का। तो वास्तव में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। हमने भी अभी तक जितने काम करे हैं उनमें कोशिश यही करी है किसी भी तरीके से कि या तो वो किसी को मोटिवेट करे, किसी को इंस्पायर करे, वो आपकी कहानी जो आप कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। और बाबा से कनेक्शन की जो बात है, पिछली 2-3 साल वर्ष पहले एक मीडिया का यहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें मैं आया था, तो ऐसे ही मैं भी ऐसी तरीके से इनवाइटेड था। मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा ब्रह्म कुमारी के बारे में पता नहीं था, तो आगरा में सेंटर है वहाँ अमर भाई ने मुझे बोला एक मित्र के माध्यम से कि ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस है और आप मीडिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच में रहे हो तो आप चलिए। तो चूंकि मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तो हैं, तभी वो कनेक्शन बनता है, अदरवाइज तो वो बाकी लोगों के पक्ष में तो नहीं आता। तो पहले से कुछ ना कुछ इनबिल्ट है, ऊपर वाले ने कर रखा है, तो तभी वो इशारा आता है और आप चल देते हो। तो ऐसा ही हुआ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं देखते हैं। मतलब ये नहीं पता था कि यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्या राजयोग में बताया जाता है। मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा अपने आप सभी लोग करते हैं, लेकिन इतना इंटेंस और इतनी बारीकी, किसी की डेप्थ में इतना चला जाना, वो सब इतना नहीं पता था। तो वो जो एक्सपीरियंस था मेरे साथ वो बहुत अच्छा था। सबसे बड़ी बात मैं फिर से रिपीट करूं कि जो पीस ऑफ माइंड, जो शांति थी, जो सभी लोग तलाश रहे हैं, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जिस पे तमाम कोर्सेज चल रहे हैं हैप्पीनेस के, और ये तो वो यहाँ अनुभव हुई, यहाँ मिली। और इस बार मैंने भी रिक्वेस्ट करी अपनी धर्मपत्नी से, जैसे अमित भाई लेके आए, मैंने कहा मेरा अनुभव बड़ा अच्छा था, मुझे लगता है आपको जाके बड़ा अच्छा लगेगा, आप चलिए। तो उसने, वो भी मेरे साथ आई हैं, शायद किसी दूसरे रूम में है वो, जो 3 नंबर या कोई कम रूम है उसमें है वो। तो खैर बात यही है कि अच्छा तो सभी को लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगेगा। अच्छी बात ये होगी, मैं खुद कोशिश उस समय से अभी तक करी और आगे फिर से यही करूँगा कि ये जो चीज़ें यहाँ सीखी हैं वो आत्मसात बनी रहें, हम करूँ मैं अपनी लाइफ में, और उन्हीं सभी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। और जो अपना प्रोफेशन है जो चल रहा है, वो तो जीवन को जीने के लिए हमको सबको करना ही है, तो करा जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आना चाहेंगे? आएंगे आप भाई साहब?
तो लंच नहीं, ओम शांति कुछ बोलिए। हम लोग अच्छे लगे कि नहीं,
आप आएंगे,
आपको जगह अच्छी लगी कि नहीं, कुछ अच्छा लगा हो, खाना वाना भी ठीक ठाक लगा हो।
ओम शांति जी। मैं इस संस्था में काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ पहले से। मेरे मम्मी डैडी आते हैं पहले से, सो हमें पता है कि ज्ञान क्या है एंड ऑल। उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, बट पंकज अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात, महादेव नगर, यस जी। तो ज्ञान उस टाइम पे नहीं था, बट जैसे जैसे बड़े हुए, थोड़ी जिज्ञासा बढ़ी हमारी, तो हमें पता चलने लगा कि ज्ञान क्या है, बाबा क्या है, हमें किस तरह से हमारी एकाग्रता बढ़ेगी जब हम मेडिटेशन करेंगे। तो ये सब हमने यहाँ पे सीखा। और बाय प्रोफेशनल अभी तो मैं आईटी फील्ड में हूँ एज एन डेवलपर, बट एक्टिंग भी करता हूँ साथ में, ड्रामा वगैरह, सो सेंटर से जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर ड्रामा मैसेज पासिंग के लिए ही किए हैं सारे। सो ओम शांति, थैंक यू।
बहुत अच्छा, आप आएंगे? ओम शांति। मेरे को कुछ बोलना नहीं आता है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ।
आप अच्छा बोल रही
और आप हाउस संभालते हैं तभी भाई साहब इतना काम कर पाते हैं ना।
सुबह से शाम तक बच्चों में निकल जाता है, और थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह जो भी थोड़ा कर लेती हूँ बस।
अब उसके साथ मेडिटेशन भी करना है जो यहाँ पर राजयोग सीखा।
इतना डीप में नहीं जा रही थी, थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन अभी थोड़ा, अभी 2 बार आई मैं इनके साथ, तो दोनों बार समझ में आया अभी थोड़ा, तो अभी ज्यादा करूंगी। और मैं इनको बोलती हूँ कि जब आप अपने काम के लिए 2 बजे उठ सकते हो तो मेडिटेशन के लिए भी उठ जाओ।
बिल्कुल, क्या बात
है ना, 4 बजे उठ जाओ तो वो चाय नहीं बनती है तो मैं बना के देती हूँ चाय। ओके। क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है हमारे से भी, क्योंकि पूरा परिवार तो इनको ही संभालना है।
क्या जादू करते हैं कि हेमंत भाई में बड़ा धीरज है, बहुत पेशेंस
है। ये ना थोड़ा इमोशनल ज्यादा है, तो पहली बार आपने देखा था ना, तब से मतलब घर में भी ऐसे ही करते हैं, तो हम इनसे बस इतना ही घबराते हैं कि कभी भी चालू हो जाते हैं बस, और कुछ नहीं, पिछला कुछ याद किया और हो गए, हम बोलते जो होता है देखते रहने का हो जाएगा सब। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे बीच परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी पधारे, हम सभी दीदी का स्वागत करते हैं अपने सत्र में। आप कुछ कहना चाह रहे थे?
घर में कितनी सादगी है उसके बारे में एक बात बताना चाह रहा हूँ, शायद आपको यकीन नहीं आएगा। लोग समझते हैं कि फिल्मी बंदा है तो उनकी वाइफ ऐसी होगी, फैशनेबल होगी। मेरे घर में टेलकम पाउडर पाउडर नहीं मिलेगा आपको, लिपस्टिक नहीं मिलेगी, पूछ लीजिए आप इनको, कभी यूज नहीं किया इन्होंने। एक बार मैं पहले जर्नलिज्म करता था तो कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक हैम्पर गिफ्ट किया था, उसमें एक टेलकम पाउडर का डब्बा था। 2 साल बाद वो डब्बा मुझे फेंकना पड़ा, कोई यूज नहीं करता। मेरे घर में कोई बच्चा भी यूज नहीं करता, ना ही ये करती कभी भी।
इतनी सादगी होना बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे बीच परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जी पधारे
हैं। पूरा हो गया।
अच्छा।
बिल्कुल आप राइट टाइम पर आए दीदी। सबने दीदी अपने अपने अनुभव सुनाए और कैसे हम राजयोग को कैसे अभ्यास करेंगे और जाके यहाँ कैसे करेंगे, सबने सुना है, बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए दीदी। आप कुछ प्रेरणा दें।
ओम शांति। आपसे पूर्व स्टेज आर्टिस्ट की ग्रुप में जाकर के आई मैं, तो वहां पर कोई एक ग्रुप से 7 लोग साथ में आए हैं जो अपनी एक्ट करते हैं, टीम पूरी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सुनाई कि हम सभी ने, 7ों लोगों ने एक साथ ऐसा संकल्प किया कि हम लोग सवेरे 4:30 बजे अवश्य उठेंगे और ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन कराया जाता है ना, तो सुबह का समय ईश्वर मिलन का समय है। जैसे हर एक से मिलने की अपॉइंटमेंट का टाइम होता है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हर जगह के, हर देश के 3 to 5 या 2 to 5, ये 3 आवर्स हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के हैं। उस समय परमात्मा हम बच्चों के लिए फ्री रहता है, उसके साथ हम अपनी जी भर की बातें कर सकते हैं, कुछ फरियाद है तो वो सुना सकते हैं, उनसे हमें कुछ चाहिए तो ले सकते। ये विद्यालय में एक बुक है ब्रह्म अमृत वेला, और वो अमृत वेला बुक में 24 नंबर का पेज है, वो आप ध्यान से पढ़ना। भगवान सुबह में हमारे लिए क्या क्या करता है, वरदान देता है, जो चाहे वो देने लिए तैयार है। उस समय हमें बहुत ही विदेही अवस्था में, माना आत्म अभिमानी स्थिति में, शरीर से डिटैच होकर के और अपनी आत्मा की चेतना में जब हम बैठते हैं, तो परमात्मा से हमें डायरेक्ट ताकत मिलती है। और वो डायरेक्ट ताकत कौन सी है? संकल्प की शक्ति, बुद्धि की दिव्यता और आत्मा में पावर्स बढ़ती हैं। आप सभी भी यहां से उस संकल्प को पक्का करके जाओ कि कुछ भी हो जाए, सुबह 3 से 5 में आधा घंटा हमें मेडिटेशन करना ही है। उससे आपको इतने मिरेकल्स अनुभव होगा। सूक्ष्म में तो प्राप्त होती है, लेकिन मैं अपना एक स्थूल एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूं। तो एक दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में बैठी थी, मेडिटेशन करती थी। हमारा बहुत बड़ा केंद्र है, उसकी बाजू की प्रॉपर्टी बिकने वाली थी। तो परमात्मा ने मुझे आदेश किया, बच्ची ये बाजू वाली प्रॉपर्टी तुम्हें परचेज करनी है। बच्ची ये बाजू वाली प्रॉपर्टी तुम्हें परचेज करनी है। मैं सोच में पड़ गई, बाबा क्या कहते हैं। मैंने कहा, बाबा आप क्या कहते हैं? तो कहे, हाँ बच्ची। अब जब मुझे बाबा ये कह रहे थे, तब मेरे पास बैंक बैलेंस 50,000 भी नहीं था और वो प्रॉपर्टी 4 करोड़ की थी, जो अपना यूथ ट्रेनिंग सेंटर बना है। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं इतना टाइम तो नहीं लूंगी। पर वो मकान, उसमें इतने प्रॉब्लम थे, क्योंकि जिसका मकान था वो उसके पर बहुत देवा हो गया था। हाई कोर्ट का प्रॉब्लम, सेल टैक्स का प्रॉब्लम, इनकम टैक्स का प्रॉब्लम, कितने प्रॉब्लम थे। पर हमारे मैनेजमेंट के टॉप जो अकाउंट के, उन्होंने मना कर दिया कि मैं, रमेश भाई ने, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मैंने अमृतवेले बाबा को बोला, मैंने कहा, बाबा रमेश भाई जी मना कर रहे हैं, अब ये काम मैं कैसे करूं? मेरे को नाम दिया, मुकेश पटेल को तुम बोलो, वो तुम्हारा काम करके देगा। वो संपर्क संबंध में है और इनकम टैक्स कंसल्टेंट है। हमने उनको बुलाया, बोला ठीक है बहन, अगर आप बजट सेट कर सकती हो तो ये काम मैं करके दूंगा। कितने प्रॉब्लम हो चिंता मत करो। अच्छा, फिर मैंने ब्रह्म मुहूर्त में भगवान से कहा कि बाबा अब इतने पैसे कहां से लाऊं? कमिटी की मीटिंग करो। बाबा ने कहा, बच्ची मीटिंग करने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं ना। अच्छा, अरे मीटिंग भी नहीं करनी है, कहना भी नहीं है और मकान लेना है। कहते, फिर बाबा ने दूसरे दिन कहा, तुम्हारे को जितने लोग जानते हैं, तुम्हारे जिनसे संबंध है, उनको समाचार दे दो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है और हम युवा सेवाओं के लिए परचेज करने वाले हैं, बस इतना समाचार दे दो। बाबा ने बोला, हमने समाचार दे दिया। वो मुकेश पटेल ने उनसे बातचीत करके 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को 2,61,00,000 लाख में सेट किया, 4 करोड़ की। अच्छा, फिर बाबा ने कहा था तो हमने समाचार दे दिया और हमने तो बिल मकान मालिक से 6 मास का टाइम लिया था कि इतना पेमेंट में हमको टाइम चाहिएगा। हमने पत्र डाला, 8 दिन के बाद एक भाई का फोन आया, बहन आप ये काम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे 51 लाख का चेक भेजना है। अच्छा, ट्रस्ट किसके नाम भेजना है? फिर 1 सप्ताह के बाद फोन आता है, मुझे उसके लिए 50 लाख भेजना है। फिर एक कुमार का फोन आता है, मुझे 25 लाख भेजना है। 1.5 महीने में मुझे 2,75,00,000 की जरूरत थी, 2,61,00,000 उसको देना था, फिर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फलाना ढिकना करके, और बराबर 2,75,00,000 आ गए, और 1.5 महीने में डॉक्यूमेंट साइन हो गए। भगवान सब सुनता है, इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त में उठो, भगवान को पत्र लिखो, जो दिल की बात है उनको लिखो और रोज उसको शुक्रिया करो। बस आज के दिन में और आज की रात में जो मेरे से तेरे साथ हुआ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, दिन और रात में जो भी हुआ, सुबह में उठ के उसके साथ शुक्रिया का भाव व्यक्त करो, आपके जीवन में इतनी सहजता हो जाएगी, आप बिलीव नहीं कर सको पर बिलीव करोगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर अनुभव के साथ दीदी ने हमें ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। तो
और आपको बताएं कि दीदी जी का इतना डायरेक्ट कनेक्शन है, आपका भी हो सकता है, केवल बुद्धि को जो है बाबा को सौंप दीजिए, रोज अमृत वेला करना, जैसे हमने अपना अनुभव सुनाया आपको, तो ये अमृत वेला वरदानी वेला है। ऐसे दीदी के पास अभी ये जो प्रोजेक्ट बना प्रेम वैश्विक संस्कृति वाला, कल दीदी ने सुनाया था इनॉग्रल सेशन में, कि कैसे बाबा जो है टच करते हैं, कितने काम, रोज सवेरे दीदी बैठना, ऐसे हमारी बड़ी दादी रोज सवेरे बाबा के कमरे में जाना, बाबा क्या है, बाबा इतना क्लियर टचिंग देते थे, उसके आधार पर ज्ञान सरोवर बना। इस ज्ञान सरोवर का भी संकल्प बाबा ने दादी को दिया कि बच्ची जगह एक ले लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बच्चे आएंगे, तो नहीं तो पहले पांडव भवन छोटा था। तो ये जितने भी यहां पर है, एक मिराकिल है कि किस तरह से बाबा की टचिंग मिलती है, और अमृत वेला सबसे उत्तम होता है। तो आप सब दीदी की प्रेरणा सुनकर के आप सबको अच्छा लगा होगा, एक बार बधाई दें, और जो संकल्प करें कि यहां से हमको कुछ अपने लिए 2-4 ऐसे पॉइंट्स अमृत बेले उठना, यहां से जाने के बाद हर एक को कैसा भी करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ऐसा कनेक्शन जोड़े, भले ही रोज बिजी हैं लेकिन आपको रोज मुरली के पॉइंट्स हो, कुछ है उस सुनने को मिले, बहुत अच्छा है। तो दी हाँ संकल्प लेकर के जाएं। हम सब दीदी के आगमन पर और दीदी से सुन करके एक प्रेरणादायी बहुत अच्छा मिला, तो एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करते हैं। थैंक यू दीदी। जी जी आप चल सकते हैं। अभी दीदी सुनाएगी तृप्ति बहन थोड़ा, जी जी फिर पूरा करते हैं।
हाँ आइए आप सुन, आइए।
ओम शांति। शोभन पिल्लई नड़ियाद से। एक बात नहीं शेयर करना चाहता था मैं, जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक मुझे शेयर नहीं करना है। कुछ चीजें आपके प्रवचन से कल ओपनिंग सेरेमनी में सुनी थी, कुछ चीजें तिवारी सर से सुनी थी, बाकी कुछ बच रहा था तो आज सुबह डॉक्टर परब सर के प्रवचन में सुनी। एक स्क्रिप्ट डेवलप हो रही है जो मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों के साथ करवाऊं, हालांकि एक असमंजस है कि बच्चों के साथ करवाई जाए कि नहीं। एक बात चली थी आज सुसाइड के ऊपर, बहुत सारे केसेस पिछले 6-8 सालों में हो गए, तो शायद ये बाबा की कृपा है कि दोपहर के खाने के बाद हम लोग सिर्फ ऐसे ही गार्डन में घूम के वापिस आए और अपने कमरे में जाके लेटे थे, और एक स्पार्क हुआ कि यार इस पे कुछ करना चाहिए, बच्चों को सुसाइड से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी वो पायलट स्टेज पर है एक स्क्रिप्ट की, किसी को किसी भी बहुत सारे रीजंस है, सर ने बताया था परब सर ने कि फेलियर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना है, और उसको सामने कोई ऐसा मिल रहा है उसके सारे फेलियर्स को वो पॉजिटिव तरीके से बताए कि दिस आर नॉट योर फेलियर्स, ये आपके फेलियर्स नहीं है, लेकिन इसको अगर आप सहजता से देखते हैं और उसको पॉजिटिव वे में अगर उसको लेके जाते हैं तो ये फेलियर्स नहीं है, ये सीखने की चीज है, सीखो आगे बढ़ो। तो अभी एक चीज ऐसी दिमाग में चल रही है थोड़ी बहुत,
शायद ये बाबा की कृपा है कि दो घंटे में वहां तक तो डेवलप हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ इतने असमंजस में हूं कि ये बच्चों से करवाया जाए या एडल्ट से करवाए, क्योंकि बच्चों को अभी आप शायद ज्यादा समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को सुसाइड के बारे में बताना और उनके ड्रामा करवाना अच्छी बात नहीं होगी, तो वो एक असमंजस है कि इसमें मैं कैरेक्टर जो डेवलप करूं तो वो बड़े किरदार के हिसाब से करूं, या फिर वो एक जनरेशन जो अभी कॉलेज से लेकर जॉब सर्चिंग वाली जो जनरेशन है, क्योंकि उसमें वो आ सकता है कि परिवार का प्यार समझ में नहीं आया, माता पिता की डांट समझ में नहीं आई। अंडर 16, बारहवीं से कम।
तो अगर उनके दिमाग में हम अपनी कहानी के माध्यम से वो बात फिट कर देंगे तो शायद वो काम नहीं करेगा
जी, नहीं चाहते हैं। दीदी आज्ञा दीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। दीदी मेरे शहर की बात है, मेरे नड़ियाद की ही बात है। 9 साल का बच्चा, उनके माता पिता लंदन में है, वो अपने मामा जी के घर पे रह रहा था। मोबाइल गेम्स के चक्कर में उसने अपने मामा जी के क्रेडिट कार्ड से 75,000 खर्चा कर दिया। वो इतना डर गया कि वो साइकिल लेके घर से ये बोल के निकला कि मैं दही लेके आता हूं। 3 दिन तक बच्चा मिला नहीं। फिर किसी ने वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में उसको देखा होगा, तो वो सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो बच्चा वहां पे 2 दिन रहा था, फिर वापस से गायब हो गया। उसकी डेड बॉडी है, नहीं है, जिंदा है, नहीं है, आज तक किसी को नहीं पता है। इस बात को तकरीबन 8 साल हुए, 2015-2016 की बात है। और बहुत सारे, मतलब मैं थोड़ा फ्री जर्नलिज्म में हूँ, लोकल न्यूज़ मीडिया जो है मेरे शहर में, अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच में जितने भी लोकल न्यूज़ आते हैं क्राइम रिपोर्टिंग, उसको मैं ट्रांसलेट करके एक दैनिक जागरण का पोर्टल है, दूसरा यूएस में गुजरात दर्पण का पोर्टल है, तो मैं उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजता हूँ। तो क्राइम रिपोर्टिंग है तो ये सारी रिपोर्टिंग इमीडिएट आती है। और हफ्ते में मैंने ये नोटिस किया है कि पिछले 8 सालों में एक महीना ऐसा नहीं होगा जहां पर मैंने 15 से 16 बच्चों की सुसाइड की स्टोरीज को कन्वर्ट ना किया हो, विच इज वेरी सैड। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैं ऐसा कुछ ना कुछ करता रहूं ताकि मैं अवेयरनेस ये बच्चों में फैलाऊं। और मैंने अभी तक तो ऐसी कोई कसम नहीं ली थी, लेकिन एक संकल्प जैसा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम बच्चों के साथ ही करूंगा, और मैं ड्रामा ही ज्यादा प्रिफर करता हूं। अभी तक एक्टिंग के लिए मैंने खुद ट्राई किया नहीं है और ना फिल्मों के लिए को ट्राई किया, लेकिन ड्रामा इसके लिए कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, और एक बार ड्रामा लिखा हर जगह उसको हम लेके जा सकते हैं, शोज कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और इट इज ईजी टू कनेक्ट। फिल्मों से ज्यादा वो ईजी होता है ड्रामा से कनेक्ट करना बच्चों को और लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल
जरूर।
मैं विपिन मामा से आपका कांटेक्ट डिटेल्स लेके या फिर उनके माध्यम से ही आपको मैं
दे दूंगा। 9426 कांटेक्ट लेने में क्या देरी है?
नहीं, ऐसी कोई बात,
कांटेक्ट लेने में क्या देरी है?
आपको जो सोच रहे हैं ना जी, उसका पूरा का पूरा जो है ब्रह्मा कुमारी में जितना आप रेगुलर होते जाएंगे आपको इतना क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आपके सारे प्रश्नों का बना बनाया मिल जाएगा।
नहीं नहीं, आपको ये पिछले चीज यहाँ आके टच हुई है ना
जी,
बाबा को आपके द्वारा कुछ करवाना है।
मैं वही समझता हूँ, इसीलिए मैं एक्चुअली जब तक मुझे लगा जब एक बार पूरा हो जाने दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने दो, थीम बन जाने दो, फिर मैं शेयर करता हूँ।
आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाना,
पक्का
वो ही आकर के आपको लिखाएगा भी
जी।
9426
जी
9426702719। ठीक है, मेरे को रिंग दे देना। आपका नाम?
शोभन पिल्लई।
शोभन
पिल्लई।
आपकी स्क्रिप्ट करीब करीब कब तैयार हो जाएगी?
एक हफ्ता लगेगा।
ठीक है, मैं वेट करूंगी।
पक्का,
यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है
जी।
आपने जो भेजा मैंने देख लिया जी।
ओम शांति। मेरा नाम असीमा भट्ट है। अभी मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन इनकी बातें सुनकर मुझे लगा ये यहाँ बताना चाहिए। लॉकडाउन के टाइम में इंडस्ट्री से जो लोग हैं उन्हें पता है, बहुत लोगों ने सुसाइड किया, और मैं भी इंडस्ट्री से हूँ, और मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ एक रूम के कमरे में। ह्यूमन साइकोलॉजी से मैं एमए हूँ। कंटिन्यू करूं? तो मैं प्रोफेशनल काउंसलर भी हूं, तब भी मैं ये एडमिट करती हूं कि मैं हिल गई थी। जितने आसपास मतलब मुंबई में, साउथ में, भोजपुरी फिल्मों में सुसाइड हो रहे थे, मेरे मन पर गहरा असर पड़ा और मैं कोरोना ग्रस्त भी हो गई। मेरे पास बाहर देखने के लिए या जाने के लिए एकमात्र जगह थी खिड़की का कोना, जिससे मैं थोड़ा बहुत बाहर देख सकती थी। वैसे में मेरे मन में एक स्क्रिप्ट आई सुसाइड पर ही, और मैंने 12 मिनट की एक फिल्म बनाई है, हेमंत जी आपको भेजी है मैंने। उस फिल्म का नाम ही है से नो टू सक्सेस। हमने सक्सेस को या आई हैव टू विन, आई हैव टू प्रूव को इतना बड़ी चीज बना दी है कि उसके आगे लगता है ये नहीं हुआ ना तो आई विल कमिट सुसाइड। तो मेरी फिल्म का वही थीम है कि सक्सेस इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसके लिए इतनी मूल्यवान परमात्मा की दी हुई चीज जिसके अंदर परमात्मा है उसको मिटा दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए। तो ये 12 मिनट की फिल्म है से नो टू सक्सेस, मैंने ही लिखी है और उसमें मैंने एक्ट भी किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म हर स्कूल कॉलेज में दिखाया जाए। जी जी जी, हाँ मैंने दयाल भाई को भेजी थी वैसे शुरू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अब मैं आदरणीय तृप्ति दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वे भी आज के विषय पर अपने विचार हमारे बीच रखेंगे। आदरणीय तृप्ति दीदी जो गुजरात भावनगर से हमारे बीच हैं, एक बार करतल ध्वनि से दीदी का अभिनंदन करेंगे और आज के विषय पर सुनेंगे।
ओम शांति। सर्वोत्तम कलाकार शिव पिता की क्या कारीगरी है, क्या उसका सहयोग है। दीदी को दूसरे वर्कशॉप में जाना है। बहुत बहुत
थैंक यू दीदी, आपने आकर इतनी अच्छी प्रेरणाएं हमें दी।
आप ही आ जाओ, वो तो आपको शेयर कर देगा।
शांति। आप सबके अनुभव सुन करके भी ऐसे लगा जो आगे कहा कि सुप्रीम सोल या सुप्रीम आर्टिस्ट शिव बाबा भी आपको याद करके प्रेरणाएं देते रहते हैं। उनकी छत्र छाया में, उनकी प्रेरणा से आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते। कई बार कईयों ने अनुभव भी किया, सुनाया भी, असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, ऐसी उसकी गुप्त मदद कहो, क्योंकि उसको भी आपसे कुछ करवाना है। आप अपनी आर्ट में तो बड़े माहिर हो, लेकिन फिर भी यहां तक इसीलिए पहुंचाया है कोई ना कोई माध्यम से कि उस आर्ट में आप कुछ ये स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखें। और उससे क्या होगा कि आपकी जो भी कला है उसमें बहुत अच्छा निखार आएगा और औरों को प्रेरणा देने वाली होगी, औरों को कुछ संदेश देने वाली होगी, आपको भी संतुष्टता होगी और दूसरों को भी इसकी आवश्यकता बहुत है ऐसे अनुभव करेंगे। और जैसे बहन जी ने बताया, मैं बोलना नहीं जानती या नहीं बोल सकती, लेकिन जो श्लोक है मुकम करोति वाचालम वाला, जो गूंगे हैं मूंगे हैं उसको बोलना भी सिखाते, लूले लंगड़े उसको चलना भी सिखाते, वो पावर वो देता है। भला आप राजयोग नहीं भी करते थे या थोड़ा थोड़ा करते थे, फिर भी इतनी मदद है। तो मैं समझती हूं आप अपने जीवन में से जो भी समय मिला है, हर एक को समान मिला है, लेकिन उस समय को डिवाइड करें। सब कुछ लौकिक कार्यों के लिए ही नहीं, अपनी बिजनेस के लिए ही नहीं, लोगों के संबंध, अपने संबंधियों के लिए ही नहीं, वो भी करना है, लेकिन थोड़ा समय स्वयं के लिए भी, स्वयं के कल्याण के लिए, और आप द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो, इसलिए जरूर निकाले। आज समय नहीं है, वो क्राइसिस है, लेकिन आप देखते हो कोई भी एक्स्ट्रा लौकिक कार्य आ जाता है, इमरजेंसी आ जाती, कोई बीमार हो जाता, कोई शरीर छोड़ देता या कोई भी प्रकार की, तो क्या करते हैं हम? कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं, कैसे भी करके तो करना ही पड़ेगा, होता है जाना ही पड़ेगा। तो अपने जो भी लौकिक कार्य है उसको एडजस्ट करते हो, और एडजस्टमेंट से क्या होता है, वो भी कार्य पूरा होता, अपना भी सेटिंग कर देते। सिर्फ कमाई करना वही लक्ष्य न हो। कमाई से भी ज्यादा जरूरत है किसकी? दुआओं की। ज्यादा जरूरत है पुण्य कर्मों की। और ये दुआएं हमें अंत तक मदद करती है। इसलिए कर्मों की गति को भी सामने रखते हुए अच्छे ही कर्म करें, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ऐसे ही कर्म करें, क्योंकि ये भी पूरा हिसाब होता है। शायद हम नहीं रखते इतना हिसाब, उसके पास पूरा हिसाब है, एक्यूरेट है, 0.0001 भी उसमें एरर नहीं आ सकती है। एक एग्जांपल दो, एक भाई बैंक में गया, मैनेजर से कुछ बात करके उसको थप्पड़ लगा करके निकल गया। अभी मैनेजर सोचने लगा मैं क्या करूं, वो तो एम्प्लॉय था। फिर वो घर गया तो वो गुस्सा उसको था अंदर, उसको तो कुछ बोल नहीं सका, घर अपनी पत्नी पर जाकर गुस्सा किया। पत्नी को लगा मेरी कोई भूल नहीं, दोष नहीं, फिर क्यों इतना गुस्सा करते हैं। फिर पत्नी ने क्या किया, उसका बड़ा बच्चा था उस पर गुस्सा किया। बड़े बच्चे ने क्या किया, छोटे भाई से उसको भी, अभी और कोई नहीं था तो वो क्या करे छोटा, वो बाहर गया और कुत्ता था उसको उसने मारा, पत्थर मारा, गुस्सा ऐसे निकाला। उस कुत्ते ने क्या किया, एक भाई को जाकर काटा, और वो कौन था समझा। इतना कर्म किसी को छोड़ता नहीं, वो फल अच्छा या बुरा मिलता ही है। और यही आध्यात्मिकता है, हम अपने कारोबार करते हुए कनेक्ट बाबा से रहे। अभी तो बाबा शब्द का तो आप सबको पूर्ण रीति से नॉलेज भी है, अनुभव भी है। पर राजयोग कोई अलग समय निकाल करके ही करे ऐसी चीज नहीं है। कर्म करते में इतना भी याद रहे कि मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, बोलना वही है, सुनना है, बोलना है, हाथों से करना है, लेकिन ये सिर्फ अंदर जो कॉन्शियस हमारा वो चेंज करना है बस। अभी जबकि समझ लिया मैं आत्मा हूं, अकेला शरीर डेड बॉडी है, चैतन्यता है वो आत्मा के कारण है, और उस आत्मा को याद करेंगे तो हमारा जो सोच होती है नेगेटिव होगी, कभी व्यर्थ होगी, हमारा जो ओरा होता है वो डिस्टर्ब होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। लेकिन जहां अब आप सोचेंगे कि मैं आत्मा हूं, वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। वो अच्छी बात है, इतनी सहज बात है, अच्छी भी है और सहज भी है। जो समझ लिया उसको ही हमें अपने अंदर स्वरूप में लाना है। और आत्मा के संबंध में जो भी देहदारी है वो देह के संबंध से है, वो विस्तार है देह के कारण, देह समझने के कारण। सारे विस्तार को हमें समेटना है तो मैं आत्मा हूं और एक ही परम पिता वो मेरा है, वही मेरा सब कुछ है। एक के साथ ही प्यार, एक के साथ ही सर्व संबंध, एक में ही सब कुछ, एक के लिए ही सब कुछ, एक बाबा दूसरा न कोई। तो ऐसी एक की लगन में स्थित होने से क्या होगा, उसकी करंट, आप कनेक्ट हुए तो करंट आप में आविर्भाव होगी, और वो करंट हमारे कार्यों को सफल करेगी। जैसे आगे सतीश भाई ने अष्ट शक्तियां बताई, आत्मा डायमंड समान चमकदार है और वो सूर्य के समान है, उस सूर्य की किरणें मुझ डायमंड पर आती है, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, 7 कलर 8 कलर जो भी कहो उसमें, तो दूसरों पर वो जाएगी। आपकी आंतरिक जो स्थिति है एक के साथ और उससे आता हुआ प्रकाश, वो अष्ट शक्तियों को, हर कर्मेंद्रियों से अष्ट शक्तियों से आप कार्य करेंगे। तो अष्ट शक्तियों का मेघ धनुष तैयार हो जाएगा और वो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं खाएगा, लेकिन उसका प्रत्येक व्यवहार त्यौहार हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। कब आनंदमय होता है? जब सक्सेस होती है। इसलिए सिर्फ योग मुश्किल नहीं है, सिर्फ योग अर्थात क्या, कम्युनिकेशन थ्रू थॉट पावर विथ गॉड। सबके साथ हमारा मन से कम्युनिकेशन होता है। यहां बैठे तो भी किस किस के पास आप जाकर आते होंगे, किस किस को याद करते होंगे, कनेक्ट हुए, जिससे कनेक्ट होते वहां से उसके वाइब्रेशन मिलते। हम परमात्मा से कनेक्ट होंगे तो उसकी गुण और शक्तियां हमारे में प्रवाहित होगी और वो हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाएगी, हिम्मतवान बनाएगी। आज इस संस्था का जो संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा, उसने जब इस यज्ञ की शुरुआत की करीब 300-350 बच्चों को लेकर के, बहुत ही विपरीत विरोध आदि के बीच शुरू हुआ और ऐसे वातावरण में भी ब्रह्मा बाबा गीत लिखते थे और जिसको मम्मा कहते वो सितार पर गीत गाती थी। जैसे यहां देखा कि आप स्टेज के पीछे वाले हो, आपको पहचानने वाले बहुत कम होंगे, लेकिन टोटल जो भी आपने क्रिएट किया, जो भी स्टेज पर देख रहे हैं, उसका आधार कौन? लिखने वाले। शुरुआत वहां से होती, आपका लिखने का आधार भी कौन? खुद, लेकिन खुद का मन बुद्धि। अभी पॉल्यूटेड माइंड होगा तो कैसा लिखेंगे? नेगेटिव, उसमें इंटरेस्ट होगा, आज का जो वातावरण है वही रचना, वही सब कुछ होगा। आधार में हूं, इसलिए मुझे आधार को अपने पर बहुत ही ध्यान रख करके, सदा उसको याद करके, उसकी प्रेरणा लेकर के, शक्ति देकर के फिर मुझे लिखना है। और अमृत वेले के लिए भी जो दीदी ने बताया और भाई साहब ने भी 2 बजे उठने की बात बताई, बहुत अच्छी बात है। और वही उठाता है, अपना काम करा लेता है, फिर आप भी हर रोज तो नहीं उठेंगे, पूरा हुआ। लेकिन जब इतनी प्राप्तियां हमारे लिए वो बैठा है, इंतजार कर रहा है, हम क्यों नहीं पहुंचे? इसलिए निंद्रा का त्याग करके भी मुझे अमृत वेले बाबा के सामने बैठ जाना है। और कुछ न करो तो फोटो के सामने बैठ जाओ और याद करो उसकी शक्ति मेरी और आ रही है, मैं उसे अपने में भर रहा हूं। तो ऐसे खुद को जरूर यहां से जाकर के, ये सारा कारोबार तो आपका चलेगा, लेकिन ये सबसे पहला काम है। लोग क्या कहते, समय मिलेगा तो ये करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, उसमें खुद का भी कल्याण और आपके पीछे जो आपकी रचना बनेगी और कईयों को वो प्रभावित करेगी। हम भाषण देंगे, उसके अलावा आप उसी बात को कोई कला के माध्यम से तैयार करेंगे, प्रभाव किसका ज्यादा होगा, याद कौन सी बात ज्यादा रहेगी, भाषण भूल जाएंगे, लेकिन आपकी जो रचना है वो याद रह जाएगी। तो सुनने से ज्यादा देखना, देखने का प्रभाव मनस पटल पर ज्यादा होता है। इसलिए ऐसी कला के माध्यम से आप बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव सोच करके अच्छी अच्छी चीजें या कोई वैल्यूज को, जैसे कल देखा अहमदाबाद का जो नृत्य नाटिका जो बनाई, उसमें कैसे कला के माध्यम से संदेश दिया, सबने पूरा ही देखा भी, नहीं तो सुनाते तो शायद कुछ उठ जाते, अभी क्या सुनना, 10 बज गया है, अभी तो जाकर सो जाना है। लेकिन कला होती है तो वो आकर्षित करती। इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि राजयोग वो सर्व योगों का राजा है, स्वयं को भी कर्मेंद्रियों का राजा बनाता है, ज्ञान के अनेक राजों से भरपूर है, सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु का सिखाया हुआ डायरेक्ट उसने सिखाया है, ये राजयोग है। बाकी आजकल तो कई योग भी देख रहे हैं, योगी भी बहुत है, लेकिन योगियों का पिता भुला हुआ है, कौन है वो नहीं पता है। यहां मैं आत्मा योगी, योग लगाने वाली, साधक साध्य परमात्मा, मुझे उनसे भरपूर होना है। बाबा बहुत बहुत आप सबको भरपूर करके आपकी कलाओं में बहुत सफलता दिलाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने हमें बहुत ही मीठे स्वर में राजयोग की महिमा और साथ में अपनी कला को आगे निखारने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अंत में आज के सत्र के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमें जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपनी कला में सफल होना है तो पहली चीज अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त की साधना। दूसरा, ट्रस्टीशिप धारण करें। मैं सिर्फ कठपुतली हूँ, ट्रस्टी हूँ, कराने वाला वो है। जब डिटैच होकर करेंगे तो वो कार्य बहुत स्मूथ होगा। और तीसरा, हम जो भी लिखें, जो भी करें, वो निस्वार्थ भाव से करें, निष्काम भाव से करें। उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य तो अच्छा रखना ही है, कोई ना कोई लक्ष्य जरूर लेना है, पर उसमें जो हमारी, जैसे कहा कि एक कामना तो होती है, क्या मिले, एप्रिशिएशन मिले, ये मिले, वो मिले, ये एक अंदर इच्छा तो होती है, लेकिन उस इच्छा को भी हमें थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जानते कि वो सब एक बार में मिलती भी नहीं है। और आज न मिलने के कारण भी बहुत ज़्यादा निराशा आ जाती है। तो हम कार्य करें, अच्छे से अच्छा करें, परंतु बुरे से बुरे के लिए रेडी भी रहें। जो भी सक्सेस सुसाइड चर्चा चल रही थी, मुझे दो लाइन पुरानी याद आ गई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम वो हैं, हम वो हैं जो हार कर भी कहते हैं कि वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें न पा सकी। हम वो हैं जो हार कर भी ये कहते हैं वो मंजिल ही बदनसीब थी जो हमें न पा सकी। तो सक्सेस किसी कार्य में सफल हो जाना नहीं है, सक्सेस वो है जिससे मुझे आत्मसंतोष मिले, जिससे मुझे शांति मिले, जिसके लिए हम कुछ कर रहे हैं उनको सुकून मिले, वो है सफलता। सफलता शील्ड मिल जाना, प्राइज मिल जाना, मतलब मेडल मिलना, ये नहीं है। ये सिर्फ दिखने वाली सक्सेस है जो बहुत घर भरे होते हैं शील्ड से और सब कुछ, लेकिन जीवन में उदासी, निराशा, हताशा है तो वो सफलता नहीं है। यहाँ सफलता की परिभाषा मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा की याद से हमें सक्सेस तो मिलनी है, ये तो निश्चित है, पर वो ठोक बजा के देखेगा भी तो, परीक्षा भी होगी। इसलिए सक्सेस को हम इन चीजों से सिर्फ न तौलें, सक्सेस वो है जो हमें आत्मसंतोष प्रदान करे। नहीं तो बहुत बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स सक्सेसफुल हैं पर न संतुष्ट हैं, न खुश हैं और न समाज उनसे खुश है। क्या कहते हैं वो, क्या दे रहे हैं? तो इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि हम सफल बने पर हर चीज के लिए हमें रेडी रहना है, और वो ताकत हमें वही परम शक्ति शिव बाबा देते हैं। तो आप सभी और हमारे मंच पर हमारे वरिष्ठ सब इस वर्कशॉप में शामिल हुए, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और अभी अंत में हम बाबा की याद में बैठेंगे और हमारे सतीश भाई जी एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करेंगे।
मैं चाहता हूँ ये बच्ची जो है ना ओम शांति कम से कम बिना अधूरा है।
हाँ, सबका टर्न हो गया, आप बचे हैं, तो अब आप भी कुछ कहें कि आप जाकर अपने फ्रेंड सर्कल में क्या फैलाएंगे।
उनको पता नहीं था कि क्या है, उनको एक दिन पहले मैंने फोन करके बोला, वैसे तो ये मेरी स्टूडेंट है बट अभी वो खुद कोरियोग्राफर है, हम साथ में ही काम करते हैं। मैंने उनको बोला बेटा ऐसा जाना है अभी मैं नान सरोवर में, वहाँ पे कल्चर एक्टिविटी का शिविर है, मैं चलोगे?
ओम शांति। मुझे सच में नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओम शांति का हॉस्टल मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पीछे ही गली सोसाइटी है, वहीं पे है। मैं रोज मेरी उम्र की और मेरे से छोटी उम्र की लड़कियों को देखती हूँ, वो रोज आती है रोज जाती है। वहाँ गार्डन है, बचपन में मैं वहाँ जाती भी थी खेलने के लिए, मेरे जो सोसाइटी के जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हम खेलने जाते थे। वहाँ हमें सिखाते थे कि डिसिप्लिन से खेलो, तब समझ में नहीं आता था खेलने में भी डिसिप्लिन होती है तब नहीं समझ में आता था कि डिसिप्लिन से खेला जा सकता है। धीरे धीरे बड़े हुए, सब अलग अलग अपने कार्यों में चले गए, सब अलग हो गए, मैं अकेली रह गई वहीं पर। मैंने सोचा पढ़ाई छूट गई है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, मैंने छोड़ दिया था और फिर सोचा कुछ करना है। बचपन से ही मेरे पापा भी फिल्म लाइन में ही थे, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, फिल्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे अलग अलग स्टेट में, और मेरे दादाजी भी वही काम करते थे तो उनका थोड़ा वो ब्लड में था। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डांस करूँगी। मैं डांस करती थी स्कूल में, डांस करती थी फ्रेंड्स के साथ, डांस करती थी जैसे फंक्शंस होते हैं स्कूल में, एनुअल फंक्शंस है कुछ भी है, कॉम्पिटिशन्स में लेके जाते थे स्कूल में, जैसे फोक कॉम्पिटिशन्स है गुजरात में, फोक कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होते रहते हैं, वो लेके जाते हैं स्कूल के बच्चों को हर बार हर साल। वहाँ से डांस थोड़ा थोड़ा अंदर जागा, सीखा, फिर सिखाना शुरू किया। मुझे नहीं पता मेडिटेशन और योगा क्या होता है। मैंने 2022 आफ्टर कोविड जाना कि योगा क्या होता है, फिर मेडिटेशन मेरी नज़र में, मैं डांस करती हूँ गाने सुनती हूँ वो मेरे लिए मेडिटेशन है। मैं रात के 12 बजे उठ के प्रैक्टिस करती हूँ मेरे कान में हेडफोन्स लगा के, वो मेरे लिए मेडिटेशन है। अभी भी मुझे दो दिन सर लेके आए हैं मुझे, उन्होंने बोला कि आप थोड़े बोर होने वाले हो, क्योंकि उनको पता है मैं कभी एक टाइम पे 2-3 घंटा नहीं बैठती हूँ वो बैठने की आदत है ही नहीं, तो उन्होंने बोला अगर बोर हो जाओ बाहर जाके पानी पी के वापस आ जाना, उनकी एक एडवाइस थी, जाओ पानी पी के वापस आ जाओ, बाहर कुछ दिख गया वही सोच दे चलता रहेगा फिर वापस आके बैठ जाना। अभी एक दिन ऐसा हुआ, वेरी फर्स्ट डे इनॉग्रेशन था इवनिंग में, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप सब दीदिया भाई जी क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि पहली बार आई हूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे समझा कि हाँ ये यहाँ की जो शिष्टता है जो विनम्रता है वो हम जैसे लोगों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा स्थिर हो जाए लाइफ में,
जो हम जा रहे हैं अभी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो वो ना जाए। हम अच्छी लाइफ बना सकते हैं अपनी, यही उम्र है अच्छी लाइफ बनाने की। हम अच्छा बनाएंगे तो आने वाली जनरेशन अच्छा करेंगी। जनरेशन तो ठीक है, पर हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, लाइक भाई के बच्चे हैं, दीदी के बच्चे हैं, वो भी हमसे कुछ नया और अच्छा सीखेंगे। मैंने कल ही सर को बताया था कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो मेरे स्टूडेंट को ना इस बार बताऊँगी कि अपने पेरेंट्स के साथ एक बार यहाँ पर एज अ विजिटर्स भी आ जाए। विजिटर आ जाएंगे तो उनको थोड़ा पॉजिटिव वाइब मिल ही जाएगा, फिर आप आओ अपने वहाँ पे और अपने सेंटर में जाना शुरू करो। आते होंगे उनके दादा दादी, जाते होंगे, मेरी सोसाइटी में ही है वो अंकल, नियमित 3 बजे उठ जाते हैं, घड़ी में जब 10 बजते वो सो जाते हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि उनके ही घर में हम नवरात्रि का फंक्शन मनाते हैं वो नवरात्रि में भी वो अंकल सो जाते हैं 10 बजे और हम नीचे गरबा करते हैं, आरती वारती खत्म करके गरबा करते हैं। तो अभी सिचुएशन ये है कि ज़्यादातर ओल्ड एज लेडीज बहुत हो गई है जिनसे गरबा अभी खेला नहीं जाते, तो वो बैठ के गरबा और वो पाठ वाठ सब करते रहते 12 बजे तक, फिर सब निकलते, हम लोग जाते पार्टी प्लॉट में गाने के लिए। वो सब जो भी है, मेरी मम्मी खुद भी वहाँ बैठ के पाठ करती है, वो सब करती है। तब मुझे रियलाइज हुआ था कि हम रोज इतने सालों से ये 10 दिन यहाँ पे इतना शोर मचाते हैं पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऊपर आराम से सो रहे हैं। मतलब वहीं से उनके अंदर कितना ठहराव है वो मिला, कि ठहराव रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मेरा मतलब ऐसे ही जब काम होता है तो मुझे फ़ोन करते, बोलते ये काम है आ जाएगी, हाँ ठीक है कब करना है क्या है बता दो आ जाऊंगी। और ज़्यादातर मैंने प्रायोरिटी बहुत दी है उनको, एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया है, मुझे पता है मेरे काम में ये नहीं आने वाले हैं, जब मुझे काम पड़ेगा दे आर ऑलवेज बिजी, फ्री होंगे तो भी बिजी। यहाँ आने से पहले भी सर को पता था कि मेरा जो वेंचर था लास्ट ईयर का, मैंने गरबा क्लासेस ऑर्गेनाइज करा था, मैंने खुद डाले हुए थे उसमें और फिर मैंने सिखाना शुरू किया था। अभी सिचुएशन ये है कि मैं उसमें से निकल गई हूँ, मेरी फ्रेंड अकेली वो हैंडल करेगी। उसने बहुत ही गुस्से में आके ये डिसीजन लिया है कि मैं अकेले ही करूँगी, ठीक है अकेले करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तब भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, मैं अब भी ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, मैंने लाइफ ही ज़ीरो से स्टार्ट करी है, तो ज़ीरो से वापस शुरू करने में मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, मेरा सच में कुछ नहीं जाएगा। फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, जो करना है करो। और मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे ये लगा कि घर का बड़ा बेटा मैं ही हूँ, जो करना है वो मैं ही करूँगी, मेरे भाई को मैं उतना बर्डन नहीं दूंगी जितना मैंने बर्डन लिया है। कल हमने एक वर्कशॉप करा था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्ड और वो जो रिएक्शन उसके ऊपर हमारा टॉपिक था। तब उन्होंने पूछा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसको देख के आपको खराब से खराब सिचुएशन में भी शांत रहना, मतलब वो आ जाता है ऑटोमेटिकली। मैं कहा वो मेरे पापा थे, कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो वो शांत रहते थे, 1-2 मिनट लेते थे फिर जवाब देते थे। हाँ ओम शांति।
मैंने इनको इतना बोलते हुए सुना, अदरवाइज सिर्फ कोरियोग्राफी काम जो बोला है उतना करो और फिर बैठ जाओ
बाद, और पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा बोल।
हाँ अभी बैठ,
ये जीरो नहीं हीरो है, इसलिए सभी एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब आप बाबा के हीरो बच्चे हैं, है ना, क्योंकि बाबा भी जीरो है हम भी जीरो हैं, आत्मा कैसी है पॉइंट ऑफ लाइट वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, तो बाबा हम सबको ही क्या बना रहे हैं, जीरो से हीरो, है ना, मनुष्य से देवता। तो ये बहुत हमें निराश होने की बात ही नहीं है, हमें तो आगे से आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।
ओम शांति। जीवन में पल प्रतिपल हम सबको अनुभव मिलते रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जो अनुभवों की खान मिली बड़ा अद्भुत मिला। हमारी एक एक जो रचनाएं हैं उनके पीछे की कहानियां हैं। मैं याद में बैठ करके भी आपको गीत सुनाने जा रहा हूं। इसको सुरेश वाटकर जी ने गाया है, ललित सोडा जी ने इसकी तैयार की, म्यूजिक तैयार किया है, धुन तैयार किया है। और सार में यही है कि मैं जा रहा था मुंबई रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था, और भरूच में हमको रात को उतरना था भट्टी कराने के लिए, मना योग तपस्या के कार्यक्रम के लिए। यहां से आदेश मिला था एक दिन रुक करके फिर आप जाना। तो मेरी प्रारंभिक जिसमें 500 गीत लिखे थे, वो प्रारंभिक दो डायरियां मेरी गुम हो गई, किसी ने लिया और दिया ही नहीं। तो बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी को ख्याल आया कि ऐसा कैसे होता है, गीत अगर देखने के लिए किसी ने लिया तो वापस तो करना चाहिए। उन्होंने कहा सतीश ऐसा करो, एक नोटिस तैयार करो, मैं जो रोज की मुरली जो महावाक्य होते हैं वो मैं सर्कुलर में डाल दूंगी और सारे सेंटर पे पहुंच जाएंगे, अरे जिसके पास भी डायरी है वो डायरी तो वापस कर दे। मैंने कहा दीदी दादी हाँ ठीक है, लेकिन मैंने दादी को दिया नहीं हो, नहीं तो मैंने कहा कि लोग कहेंगे कि आज इसकी डायरी गुम हो गई, कल यही खुद ही ने गुम हो जाए, तो मैंने दिया नहीं। मैं जा रहा था तो दूसरी हमारी तीसरी डायरी, उसको मैंने एक पर्स बनाया, उसको साथ में लिया, ऊपर के बर्थ पे मैं सो रहा था और साइड के बर्थ पे जब उतरना था भरूच में रात को 2:30 बजे, तो मैं उसको ही जो बहुत प्यारी तीसरी डायरी थी कहीं ये गुम ना हो जाए उसी को मैंने साइड के बर्थ पे रखा, सब सामान लेकर आके दरवाजे पे बैठ गया। और अभी स्टेशन आने वाला था, 10 मिनट केवल शेष था, कोई दो व्यक्ति आए, जबकि कोई स्टेशन नहीं था, वो आए और कहा ये बर्थ हमारी है और ये किसी का पर्स है, तो नीचे को दिखा रहे थे, मुझे थोड़ी आहट मिली। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो देखता हूँ वो पूछ रहे थे कि आपका है किसी का है क्या, वो मेरा था। मैं उठ करके लिया और स्टेशन पर आया, उस समय बाबा की टचिंग मिली, जो गीत लिखा वो मैं आपको सुना रहा हूं। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला एक बार कहा तुम मेरे हो तो बेहद मुझको प्यार मिला ऐसे करुणा ऐसे ममता ऐसे करुणा ऐसे ममता तेरी याद दिलाती है याद में तेरे दिल खो जाता आँख सजल हो जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है
ओम शांति